प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
आइए मित्रवर, इसी सुंदर गीत के साथ ही हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमें आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और अपने सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम नए नियम से रोमियों की पत्री का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में इसके 8वें अध्याय को आरंभ किया। आज भी हम 8वें अध्याय को देखेंगे और 8वें अध्याय के 28वें पद से आगे हम अपने बाइबल अध्ययन को आरंभ करेंगे और तब हम परमेश्वर के नवीन उद्देश्य के विषय में अध्ययन करेंगे। मेरे मित्र, यदि रोमियो की पत्री बाइबल पवित्र शास्त्र की सबसे महान पुस्तक है और रोमियो का 8वां अध्याय जल के उच्चतम स्तर को बताने वाले चिन्ह के समान है, तो 28वां पद अटारी तथा अर्थात शिखर है। परमेश्वर का उद्देश्य पापी के उद्धार की गारंटी अर्थात जिम्मा लेता है। अग्रिम तीन पद उद्धार की आरोहण प्रगति को दर्शाते हैं। स्वाइये इसी संक्षिप्त परिचय के साथ अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं, किंतु इससे पूर्व के कार्यक्रम को आरंभ करें अपने मनों की तैयारी के लिए। प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगें, हम प्रार्थना करें। हे अति दयालु और प्रेमी पिताजी, हम दीनता के साथ अपने सिर को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं इन क्षणों के लिए जो आपने अपनी अनुकंपा से हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमारी सहायता करने की कृपा करें, हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन को समझ सकें, ग्रहण कर सकें और इसके अनुसार आचरण भी कर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है, किसी समस्या में उलझा हुआ है, किसी घोर पाप में फंसा हुआ है, प्रभु आप उसका छुटकारा करें। हमारे मध्य में उत्पन्न होने वाली सारी बाधाओं को दूर करें ताकि हम पूर्ण स्वतंत्रता में आपके वचन का अध्ययन कर सकें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए मित्र, अपने कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ अपनी पवित्र बाइबल से देखिए रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय, उसका 28वां, 29वां और 30वां पद। इन पदों में इस प्रकार से लिखा है, रोमियो 8:28-30। और हम जानते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिनके विषय में उसे पूर्व ज्ञान था उसने उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, जिससे कि वह बहुत से भाइयों में पहलौटा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया है उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। प्रिय मित्र, हम इस पद को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसके उद्देश्य अर्थात अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। एक विद्वान व प्रभु के दास ने इस पद को एक थके और निराश हृदय के लिए तकिया कहकर संबोधित किया है। मेरे मित्र, मेरे प्रिय भाई बहन, मैंने और आपने अनेक बार इस 8वें अध्याय के 28वें पद के द्वारा अपने पीड़ित और निराश हृदय को सांत्वना दी है। मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जब मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया। मैं इतना दुर्बल हो गया कि मेरी आवाज भी समाप्त हो गई। मुझे अनेक दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मेरा मन गहरे दुख और पीड़ा में डूब गया। इस निराशा की दशा में मैं अस्पताल के पलंग पर लेटा दीवार की तरफ मुंह किए आंसू बहा रहा था। मैं अपना मुंह दीवार की ओर किए पड़ा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु, क्या मैं अब आपका सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकूंगा? क्या मैं अब स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा? प्रभु, यदि तू मेरे प्राण लेना चाहता है तो मैं तेरे पास आने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी तुझसे विनती है कि मेरे स्थान पर दूसरा व्यक्ति तैयार कर दे। इस दुख और आंसुओं की दशा में मुझे ये पद स्मरण आए, मेरे हृदय को आशा और शांति मिली। मैंने स्मरण किया कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई ही को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। ये पद मेरे जीवन में पूर्णता, सच और वास्तविक साबित होता है। प्रमाणित होता है। और मैंने जब इसको स्मरण किया, मेरे हृदय को आशा और शांति मिली, और प्रभु ने इसी पद के अनुसार मेरे लिए किया भी। उसने उस सारी रोग और परेशानी और निराशा की अवस्था में मेरे लिए भलाई उत्पन्न की। मेरे मित्र, हम जानते हैं कि आज सारी सृष्टि पीड़ा से कराह रही है, परंतु विश्वासी जन इसके अतिरिक्त कुछ और भी जानता है। वो ये जानता है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, चाहे वो करहाट ही क्यों ना हो, कष्ट, पीड़ा, निराशा ही क्यों ना हो। आज हम चारों ओर क्लेश, मुसीबत, परेशानियों से घिरे हुए हैं, आतंकवाद से घिरे हुए हैं, उग्रवादियों से घिरे हुए हैं। हर समय चारों ओर हमारे हत्याएं हैं, आत्महत्या है, मृत्यु है। किंतु मेरे प्रिय मित्र, एक विश्वासी जन के लिए एक महान आश्वासन है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। मेरे मित्र, हम जानते हैं ये वाक्यांश रोमियो की पत्री में 5 बार प्रयोग हुआ है और जानना 13 बार प्रयोग हुआ है। यह जानना साधारण जानना नहीं है, यह आत्मिक जानना है, यह अनुभव से जानना है। मेरे मित्र, मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे अत्यंत प्रेम करता है, और यह मैंने अपने अनुभव से जाना है। तब यहां पर लिखा है सब बातें। सब बातों का अर्थ है बुरी और भली। ये सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। प्रभु के दास याकूब के पुत्र यूसुफ ने अपने जीवन में इस सत्य का अनुभव किया। आप जानते हैं कि यूसुफ ने किस प्रकार से मृत्यु से होकर जीवन को देखा। उसके भाइयों ने उसे मारने का प्रयास किया, उसे गड्ढे में डाल दिया और उसे मिस्रियों के हाथ बेच दिया। वो दासों के रूप में रहने लगा, किंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, करुणा की, और अंत में हमने देखा कि वो सारे इसराइल के लिए आशीष का कारण बना, अपने भाइयों के लिए, अपने पिता के लिए, उस अकाल के समय में आशीष का कारण बना। सो मेरे मित्र, सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर के अभिप्राय से बुलाए गए हैं, परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। परमेश्वर से प्रेम करने वाले वही हैं जो परमेश्वर के अभिप्राय से बुलाए गए हैं। अब ये बात अनेक लोगों को पचाने में कठिनाई हो सकती है, वे इसे पसंद नहीं करेंगे। मित्रवर, बुलाए हुए से तात्पर्य ये नहीं कि जिन्हें निमंत्रण भेजा गया है, बल्कि वे जिन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया है। ध्यान दीजिए, बुलाए हुए से तात्पर्य ये नहीं है कि जिन्हें परमेश्वर ने निमंत्रण भेज दिया। निमंत्रण तो परमेश्वर ने सबको भेज दिया, किंतु विशेष बात यहां पर है कि जिन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया है वे बुलाए हुए हैं। ये वे हैं जो परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। प्रेरित पौलुस संसार में रहने वाले व्यक्तियों के 3 समूह बताते हैं। इस संसार में प्रेरित पौलुस के अनुसार व्यक्तियों का, मनुष्यों का 3 समूह निवास करता है, और इसका आधार उन्होंने मसीह यीशु को रखा है। आइए आप मेरे साथ देखें 1 कुरिन्थियों का 1 अध्याय 23 और 24 पद। यह इस प्रकार से लिखा है, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों की दृष्टि में ठोकर का कारण और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता है, परंतु उनके लिए जो बुलाए हुए हैं, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, मसीह परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। यहां पर 3 व्यक्तियों को प्रेरित पौलुस हमारे सामने रखते हैं। यहूदी, सबसे पहले वो यहूदियों के विषय में बताते हैं, यहूदी, दूसरे यूनानी और तीसरे बुलाए हुए। यहूदी धर्म में विश्वास करने वाले लोग थे। यहूदी धार्मिक लोग थे। वे धर्म में विश्वास करते थे, वे नियम परंपराओं और विधियों का पालन करने वाले लोग थे। आज भी वो ऐसे ही हैं। उनके लिए मसीह का क्रूस ठोकर खाने का पत्थर था, क्योंकि वे परंपराओं पर और नियमों पर, व्यवस्था पर, विधियों पर विश्वास करते थे। यूनानी, इससे तात्पर्य है अन्य जाति लोग। यूनानी दर्शन अर्थात फिलॉसफी तथा मानवीय बुद्धि पर विश्वास करते थे, और उनके लिए मसीह का क्रूस मूर्खता की बात थी। और तब तीसरे लोग हैं, तीसरा समूह है, बुलाए हुए लोग। ये वो समूह था जो यहूदियों तथा यूनानियों अर्थात अन्य जातियों में से चुने हुए लोगों से मिलकर बना हुआ था, जो अपनी योग्यता या धर्म के कारण नहीं चुने गए थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था। उनके लिए मसीह का क्रूस उद्धार पाने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य था। इन बुलाए हुओं ने परमेश्वर के शब्द को सुना और स्वीकार किया और उसके पीछे चलने लगे, उसका अनुसरण किया। मेरे मित्र, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। संसार में लोग इसलिए परमेश्वर से दूर नहीं भटक रहे हैं कि उनको कोई बलपूर्वक भटका रहा है, परंतु इसलिए क्योंकि उन्होंने भटकना पसंद किया है और उसे अपनी इच्छा से चुन लिया है। उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग किया है और इसलिए मनुष्य स्वयं परमेश्वर के समक्ष दोषी है। तब 29 और 30 पदों में हमने पढ़ा, क्योंकि जिनके विषय में उसे पूर्व ज्ञान था उसने उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, जिससे कि वह बहुत से भाइयों में पहलौटा ठहरे। अब यदि आप 28वें पद पर ध्यान करें तो वहां आप पाएंगे कि पौलुस चुने हुओं के विषय में नहीं बल्कि बुलाए हुओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जो बुलाए हुए हैं वे पूर्व निश्चित हैं। पूर्व निश्चित शब्द का प्रयोग नाश होने वालों के लिए नहीं वरन बचाए जाने वालों के लिए प्रयोग किया गया है। यदि आप किसी व्यक्ति को ये कहते सुनते हैं कि पूर्व निश्चित व्यक्ति नाश होगा, तो आप समझ लीजिए कि वह व्यक्ति पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रचार नहीं कर रहा है। पूर्व निश्चित या पहले से ठहराए जाने का तात्पर्य यह है कि जब परमेश्वर आपको बचाता है तो वह पूर्ण रूप से आपको समझने और आपकी देख रेख करने का जिम्मा लेता है। वो इस उत्तरदायित्व को निभाने जा रहा है। जिन्हें वह पहले से जानता है उन्हें पहले से निश्चित भी किया है अर्थात ठहराया है, और जिन्हें ठहराया है उन्हीं को उसने बुलाया है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। दूसरे शब्दों में ये अद्भुत अध्याय पवित्रीकरण पर है, परंतु फिर भी पौलुस ने इसका वर्णन नहीं किया है, क्योंकि पवित्रीकरण परमेश्वर का कार्य है और ये कार्य विश्वासी जन के हृदय और जीवन में होता है। ये परमेश्वर का अनंत अभिप्राय है। इसका बड़ा साधारण सा अर्थ है कि जब प्रभु, जो भेड़ों का महान, सच्चा प्रधान व अच्छा चरवाहा है, 100 भेड़ों को चराने के लिए ले जाता है तो अपने घर 100 भेड़ों के साथ ही वापस आना चाहता है। वो उनमें एक भी भेड़ को नहीं खोएगा। आपको लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय का 100 भेड़ों वाला दृष्टांत अवश्य स्मरण होगा। इस दृष्टांत में एक अच्छा चरवाहा है जो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। उसकी एक छोटी भेड़ खो जाती है और झुंड से बाहर चली जाती है। आप विचार कर सकते हैं कि वो कहेगा कि जाने दो, एक के खोने से कोई अंतर नहीं पड़ता, और भेड़ें ले आएंगे। 99 भेड़ें तो झुंड में सुरक्षित हैं ही। ये तो वास्तव में अच्छा प्रतिशत है, 99 हैं। कुछ लोग तो 50% से भी संतुष्ट हो जाएंगे। कुछ चरवाहे तो ऐसे भी हैं जिनके बाड़े खाली हो गए हैं फिर भी संतुष्ट हैं, निश्चिंत हैं। परंतु ये चरवाहा कुछ विचित्र और अनोखा चरवाहा है। वह 99 भेड़ों से भी संतुष्ट नहीं है। ये असाधारण चरवाहा है। मित्र, यदि वो 100 भेड़ों को धर्मी ठहराता है तो वह 100 भेड़ें ही महिमा में प्रवेश करेंगी। वो उन 100 की 100 भेड़ों को अपनी महिमा में ले जाएगा, 99 भेड़ों को नहीं। अब इस दृष्टांत को व्यक्तिगत बनाकर विचार कीजिए। प्रभु यीशु मसीह 1 से लेकर 99 तक गिनती करते हैं और वो देखते हैं कि 100वीं भेड़ झुंड में नहीं है और 100वीं भेड़ आप हैं। जी हां मित्र, वो आप हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते कि मैं इस व्यक्ति को, इस भीड़ को छोड़ जाऊंगा। वो आपको खोजने के लिए निकलते हैं और वो आपको खोज कर वापस लेकर आते हैं और झुंड में सम्मिलित करते हैं। क्या ये सुंदर बात नहीं है? जी हां मित्र, ये एक विश्वासी के लिए अत्यंत आशीष की बात है। तब हम 31वें पद में पढ़ते हैं, अब हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध है? वह जिसने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, तो वह उसके साथ हमें सब कुछ उदारता से क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है। वो कौन है जो दोष लगाएगा? मसीह यीशु ही है जो मरा, हां वरन वह मृतकों में से जिलाया भी गया, जो परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या सताव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के सदृश समझे जाते हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जीवन से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मुझे पूर्ण निश्चय है कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना शक्तियां, ना ऊंचाइयां, ना गहराइयां और ना कोई सृजी हुई वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकेंगी। प्रिय मित्र, 31 और 32 पदों में हमें बताया गया कि परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। उसने अपने दास इब्राहिम के पुत्र को छोड़ दिया परंतु अपने पुत्र को नहीं रख छोड़ा। जब उसने अपने पुत्र को ही हमारे पापों के बदले मरने के लिए दे दिया, तो वह हमारी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति क्यों ना करेगा? प्रेरित पौलुस बताते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए धर्मी ठहराए हुए लोग हैं और जो परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं उन्हें कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। मसीह ने अपना प्राण देकर तथा पुनः जीवित होकर उनके धर्मी ठहराए जाने की कीमत को, उनके मूल्य को चुका दिया है और इसलिए अब कोई भी उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकता। 35 और 36 पदों में हमने पढ़ा, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? मेरे मित्र, ये सब बातें कल्पनीय हैं। किसी प्रकार का भी क्लेश आपको मसीह के प्रेम से पृथक नहीं कर सकेगा। ये पौलुस के जीवन की संक्षिप्त जीवन कथा है। क्लेश, संकट, सताव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, इनमें से कोई भी एक विश्वासी जन को मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आगे फिर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना शक्तियां, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई सृजी हुई वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। प्रिय मित्र, आरंभिक कलीसिया के विश्वासी मृत्यु के समय धन्यवाद देते थे। धन्यवाद देते थे कि तुमने मुझे मेरे उचित स्थान पर मेरे उद्धारकर्ता के पास पहुंचा दिया है। पौलुस को पूर्ण निश्चय है कि वो अपने प्रभु के पास जाएंगे। क्या आपको भी ऐसा ही निश्चय है? मित्र, उद्धार की कथा एक सुंदर कथा है। हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया, और इसलिए कोई भी वस्तु हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इसी को प्रेम कहते हैं। और इस अध्याय में हमने देखा कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं, सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। और अंत में हमने सीखा कि कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। प्रिय मित्र, मुझे आशा है इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको अवश्य ही लाभ पहुंचा है। यदि आप वास्तव में इन आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं जो इस अध्याय में हमने पढ़ी हैं, जिनका अध्ययन किया है, सो आप प्रभु यीशु मसीह के समीप आ सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जो आए हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त होता है, और जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके जीवन में सभी बातों के द्वारा वो भलाई को उत्पन्न करते हैं। जिन्हें प्रभु ने बुलाया है, ठहराया है, चुना है, जिन्हें उन्होंने धर्मी ठहराया है, उन पर किसी को दोष लगाने का अधिकार भी नहीं है। और इस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह में इन महान आशीषों को प्राप्त करते हैं। सो आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को हम इन्हीं वचनों के साथ समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे और अपने वचन में आपको स्थिर करे। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्य वचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।